Amen. God bless you all in the name of Jesus Christ, our Lord.
खुदावंद आप सबको बरकत दे यीशु मसीह के नाम से जो हमारा खुदावंद है.
And I wish you all a good appetite for the word of God.
और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं ताकि हम एक अच्छी रूहानी غذا जो है वो खुदा के कलाम की खा सकें.
You see it's 11 o'clock here Beijing in China.
और अभी इस वक्त जो चाइना के अंदर है वो रात के 11:30 बज चुके हैं बीजिंग के अंदर.
So I was always tired, but when I opened the Bible, and suddenly the strength come.
और मैं हमेशा थका हुआ होता हूँ, लेकिन जब भी मैं बाइबल मुकद्दस को खोलता हूँ, तो एक कुवत ताकत जो है वो मेरे अंदर आ जाती है.
Because it is the only thing important is the Lord and His Word.
क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही चीज जो है वो जरूरी है, और वो खुदावंद है और उसका कलाम है.
God has given us the life.
खुदावंद ने हमें जिंदगी अता की है.
Not the contrary.
और उसके मुताबिक जो है वो कलाम है.
So brother, I can ask your brother to pray.
और हम दुआ करेंगे.
Hallelujah. Hallelujah.
आइए हम दुआ करते हैं. उसी यीशु में मेरे जिंदा आसमान बाप, मैं दिल और दिल के गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, क्योंकि तू ही शुक्रगुजारी के लायक हो खुदावंद है. खुदावंद, हम तेरे हुजूर में आते हैं और तेरे हुजूर में झुकते हैं, सब दरअसल वजूद होते हैं. और खासतौर पर इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तूने हम बने इंसान के ऊपर अता किया कि हम सब मिलकर तेरे हुजूर में आ सके, तेरे हुजूर में झुक सके, सब दरअसल वजूद हो. हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं. हम इस काबिल ना थे, लेकिन तूने हमें इस काबिल बना दिया कि हम तेरे कहलाए. हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं. अब दामन खासतौर पर दुआ करते हैं. अभी वक्त है कि हम तेरे पाक कलाम को सुने. तो अब दामन जितनी देर तक हम तेरे कलाम की बातों को सुनते हैं, अब दामन तो तेरा पाक भी जो हम सबका अच्छा मददगार है, वो हम सबों की मदद करे ताकि हम ईमानदारी के साथ और रूहानियत के साथ और अकीदे के साथ हम तेरे कलाम को सुनने वाले हो सके. और अब दामन इस कलाम को सुनकर फुल न हो, बल्कि तेरा पाक भी जो हम सबका अच्छा मददगार है हमारी मदद करे. खासतौर पर तेरे बंदा प्रभु दोनों के लिए दुआ करते हैं, जो वो तेरे पाक कलाम की सच्चाइयों को तेरे लोगों तक पहुंचाए, तो ये अकदामंद तेरे लोगों के लिए बायस बरकत हो. और अकदामंद ब्रदर ब्रूनो के खानदान के लिए, इनके लिए, इनके बेटे बेटियों के लिए, इनकी मिसेस के लिए तेरे दिल में बरकत की दुआ करते हैं. तो अपने लोगों को बड़ी दे और अकदामंद अपने कलाम के लिए इसी तरह इस्तेमाल कर. बाकी सारे वक्त में तुम्हारे साथ हो, शामिल हाल हो, मदद कर देता इसी तरह सिखाने के सारे माहौल में. तू हमारा रहनुमा होना, तेरा पाक भी हमारा रहनुमा. मांगते हैं अब्दुल यीशु मसीह के नाम से. आमीन.
आमीन. आमीन. गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. हालेलुया.
खुदावंद आप सबको बरकत दे यीशु मसीह के नाम से. आमीन. हालेलुया.
हालेलुया. एंड यू नो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द वर्ड ऑफ गॉड मस्ट एंटर इन द हार्ट, नॉट इन द ब्रेन.
और आप जानते हैं भाइयों और बहनों, को खुदा का कलाम जो है वो दिलों के अंदर दाखिल होना चाहिए, ना कि सिर्फ जहनों तक रहना चाहिए.
Yes, because sometimes we don't think with the brain, we don't use the reflection of the brain, but we feel deep in our heart something which is quite difficult to express in the words.
और बाद ऐसा होता है कि हम अपने दिमागों के साथ, जहनों के साथ काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाज औकात हमारे लिए बहुत मुश्किल बन जाती है उन कामों के लिए.
That's why I would like you to, when we listen and I hope that you will re-listen to the sermons, I wish that you let it enter in the heart, deeply in your heart, not in the brain.
और मैं इसलिए उम्मीद करता हूँ कि जब आप कलाम को सुनते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कलाम को दोबारा भी सुनते हैं, ताकि ये कलाम जो है वो आपके दिलों के अंदर दाखिल हो सके.
One principle that is very important for you to know, and I repeat, the Old Testament is the shadow of the New.
और एक जो इसका असूल है वो आप सब जानते हैं कि जो पुराना ऐदनामा है वो नए ऐदनामे का अक्स है.
When we read something in the Old Testament, You must pray and ask God the revelation. What does it mean and how can I put it in practice, spiritually speaking?
और जब हम इसको समझते हैं तो रूहानी तौर पर हमने इसको इस तरह से समझना है कि जब हम कलाम को सुनते हैं तो हमने उसको अमली अतराक में अपनी जिंदगियों के ऊपर किस तरह इसको काम के अंदर लेकर आना है.
So here, now our message, what we call the message of the hour, is the coming back to the written word of God.
और यहाँ पर जो हम कलाम को दागर बोलते हैं ये क्या है? ये आखिरी वक्त का पैगाम है जिसका मतलब है कि खुदा के कलाम की तरफ वापस आना.
Sometimes you can yourself go on internet and you have some advertisement. You just look for something and then you have a lot of advertisement that comes.
बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप इश्तिहार देखते हैं, आप एक इश्तिहार को देखते हैं तो जब आप उसको ढूंढते हैं तो बहुत सारे इश्तिहार जो हैं वो आपके आंखों के सामने आ जाते हैं.
You can put the word Jesus and you have millions of people who speak about Jesus.
आप लिखें एक ही लफ्ज यीशु और आपको वहां पर मिलियंस की तादाद में लोग मिल जाएंगे जो इसके पैरोकार होंगे या उसको मानने वाले होंगे.
And I am always astonished by the way, even in the films, the filmmakers, I'm always astonished by the way they invent things.
और मैं हमेशा जो है वो चौंक जाता हूँ उन लोगों को देखकर जो इन चीजों को इजाद करते हैं या जो फिल्मों को इजाद करते हैं.
Even recently, a brother speak about a Bible, a new Bible, another Bible, which has been written in Ethiopia, whatever. You see stupidity always.
और आप देखें कि एक नई बाइबल जो है इथियोपिया के अंदर इजाद कर दी गई है और जिसमें आप देखें कि इस ये एक ऐसी बेवकूफी है जो उन्होंने एक नई तौर पर इजाद की है.
And in fact, after once you enter in this word, because the word of this is the word of the denomination, you must understand when you enter in internet, it is the word of the denomination.
और जब आप इंटरनेट के ऊपर दाखिल होते हैं तो ये एक दुनिया है जो तंजीमों की दुनिया है, जो फिरकों की दुनिया है.
That's why I ask a lot of times when I was in Pakistan to stop mixing with internet, with Facebook and WhatsApp, all the things, because it's very dangerous. Only there are a lot of crazy people there.
इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से ये चीजें हैं जो बहुत सारी मिक्सिंग है और इन सारी चीजों से आपको बचकर रहना है.
And in fact, when you enter, when you put one word, you realize one, maybe, of course, there are things of God, but it's rare, very rare. Brother Branham, Brother Frank, is even this is mixed with a lot of confusion. So it's rare to see the good food.
और आप देखें कि बहुत कम होता है जो अच्छी खुराक आपको इंटरनेट के ऊपर मिलती है, जो ब्रदर ब्रैनम का हो गया, ब्रदर फ्रैंक का हो गया, लेकिन इसके बरक्स आपको बहुत सी जो दुनियावी चीजें हैं वो आपको इंटरनेट के ऊपर मिलती है.
एंड सो यू रियलाइज इन फैक्ट व्हेन यू सी समवन इन्वेंटिंग थिंग्स और ब्रिंगिंग अनदर गॉस्पेल, इट इज इन फैक्ट because they want to destroy the only message of Jesus Christ, because there's only one message of Jesus Christ.
और क्या होता है उसका असर क्या होता है? वो ये होता है कि वो जो खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम है उसको वो खराब कर रहे होते हैं या उसको तोड़ रहे होते हैं या तबाह कर रहे होते हैं और उसका असर ये पड़ता है.
Because I have experienced also a lot of people begin, they listen one thing, two thing, three thing, and then in the end they will blaspheme against Jesus Christ and they will read and listen things about Jesus Christ and they are blaspheming.
और मैंने इस बात को देखा भी है कि कुछ लोग जो होते हैं वो पहले तो बड़े जोशीले तरीके से दाखिल होते हैं और उसके बाद फिर वो इल्जाम तराशी या उसी के खिलाफ गुनाह करना शुरू कर देते हैं.
So that's why the message of the hour separates us from unbelief.
और इसलिए ये जो आखिरी वक्त का पैगाम है ये हमें गैर ईमानदारी से या ईमानदाराना रवैये से अलग रखता है.
We have read and we are reading the book of Nehemiah.
हम जो है वो नहमिया की किताब को पढ़ रहे हैं.
And we are speaking of the restoration.
और हम जो है वो बहाली की बात कर रहे हैं.
You remember Brother Frank, he was in Brussels and he said, restore to what? Restore to what? To the very beginning.
और आपको याद है कि ब्रदर फ्रैंक जो है उन्होंने कहा कि हमने किस चीज में बहाल होना है, किस चीज में बहाल होना है. ये उन्होंने शुरुआत में शुरुआत की बात की.
Yes. And in this book of Nehemiah, we speak about the restoration of the walls and of the cities, of the city of Jerusalem.
और ये जो किताब है नहमिया की, ये हम देखते हैं कि इसमें जो दीवारें हैं शहर की, उसको दोबारा से तामीर किया गया.
And for us, we come back to the restoration of all things, waiting for the return of Jesus Christ.
और जो हम हैं, हमने इन सारी चीजों के अंदर बहाल होना है जो दाऊद यीशु मसीह ने हमारे लिए की, और उसके इंतजार हम कर रहे हैं ताकि ये हम इन सारी चीजों में बहाल हो सके.
I am sure that brothers and sisters who have listened to my sermons when I was in Pakistan, in parallel, they were listening to other people, of course.
और मुझे मैं इस बात के प्रमुख पे कौन के कुछ भाई और बहन ने जो पाकिस्तान के अंदर हैं, वो जो है वो जो हम सुन रहे हैं उनके बिल्कुल मुतबादल दूसरी चीजों को भी सुनते हैं.
But I want to repeat that you know, in Pakistan, the people do not read, and there are 3,000 pages of Brother Frank, and nobody has read it. That's why I am wondering why and what they are preaching.
और पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, जो लोग हैं वो ब्रदर फ्रैंक की जो चीजें हैं लिखी हुई उनको ना पढ़ते हैं और ना ही उनके ऊपर गौर व खोज करते हैं, लेकिन फिर भी वो कलाम सुनाते हैं. और मुझे परेशानी इस बात की है कि वो क्या कलाम सुनाते हैं.
We must be truthful, say always the truth and not mix with lies. Either you say all the truth or you are in lies.
हमें हमेशा जो है वो सच्चाई का साथ देना चाहिए. या तो आप हमेशा सच्चाई के साथ रहें, या फिर झूठ जो आप सुनते हैं या बोलते हैं आप उसको देखें.
In the Bible, we have read last time, we have read until chapter 9 of Nehemiah.
बाइबल के अंदर हमने पिछली दफा 9वां बाब पढ़ा था नहमिया की किताब के अंदर.
Correct, brother?
Yes, sir.
And we have now we are reading the chapter 10. We have read chapter 10 already.
हमने 10वां बाब जो है वो पढ़ लिया था.
When we had read, you remember last time we read that they made a covenant with Jesus Christ. With God. They make a covenant.
उन्होंने खुदा के साथ जो है वो वादा किया था 10वें बाब के अंदर.
And we, the New Testament, God is Yahshua. The name is Yahweh-Shua. We make the covenant with the name of Jesus Christ.
और हमें याद है कि नए नाम के अंदर हम उसको याशुआ कहते हैं, जो नाम है जो खुदा के साथ एक वादे का नाम है.
In this chapter 10 is written that the people of God has separated from the foreigners.
और हमने 10वें बाब के अंदर पढ़ा था कि जो लोग हैं खुदा ने उनको जो गैर मुल्की लोग थे उनसे अलग किया.
Of course, and I repeat, in the Old Testament they separate physically from the foreigners. In the New Testament we separate from the false doctrines.
और दीवाने अहनामा के अंदर हम देखते हैं कि जिस्मानी तौर पर उनको अलग किया गया, लेकिन नए अहनामा के अंदर हम देखते हैं कि रूहानी तौर पर जो छुट्टी तालीम में है हमने उनसे अलग होना है.
We have read that in the chapter 10 that the tithes and the gifts were to be restored in the New Testament.
हमने पिछली दफा पढ़ा था कि तस्वीर जो दर्ज की है वो बहाल होनी चाहिए और जो हमारे तोहफे तहायफ है उन सारी चीजों को हमने बहाल की तरफ देकर आना है.
And also is written in verse 37, and also the service in the house of God.
और इसके साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो खुदा के घर की खिदमत है उसको भी हमने सरंजाम देना है.
Chapter 11, there are one person out of 10 who will dwell in Jerusalem.
और ग्यारहवें बार के अंदर हमने देखे है कि उनमें से एक शख्स जो है वो हमेशा उनके दरमियान में मौजूद होना चाहिए जो उसकी खिदमत करते हैं.
Brothers, some of you can read Nehemiah 11.
हम पढ़ेंगे नहमिया 11 बार.
Only the verse, first verse.
और की पहली आयत का हम पढ़ेंगे. लिखा है नहमिया चैप्टर 11 वर्स 1. और लोगों के सरदार यरूशलेम में रहते थे और बाकी लोगों ने कुरे डाले कि हर 10 शख्सों में से एक को शहर मुकद्दस यरूशलेम में बसने के लिए लाए और 9 बाकी शहरों में रहे.
Amen. You see, it's not everybody who accept the word of God.
और आप देखिए कि ये हर कोई नहीं थे जिन्होंने खुदा के कलाम को कबूल किया.
It's like in the New Testament, there are a lot of people who go in the church, a lot of people who go in denomination, but those who are in the rapture is rare.
और जैसे नए नामों के अंदर हर कोई जो है चर्च के अंदर जाता है, वो कलीसियाओं के अंदर जाता है, लेकिन जो ईमान लाते हैं वो कम है.
Yeah, the word of God comes from Jerusalem, not from Rome.
और जो खुदा का कलाम है वो यरूशलेम से आया, ना कि रोम से आया.
And chapter 12 we see that the restoration goes on also with the Levites who were charged for the singing, for the for celebration of God.
बाद में हम देखते हैं कि ये काम जो है, ये खिदमत का काम जो है, ये जारी रहा और जो गाने का काम था, बजाने का काम था, लावी के ये सादे उसकी खिदमत को सरंजाम देते रहे.
And this we can read brother 12, Nehemiah 12:24.
ये हम पढ़ सकते हैं नहमिया 12 बाब की 24 आयत के अंदर. 24 और लावियों के रईस हस्बी श्रीपिया और यशुआ बिन कदमी के अपने भाइयों समेत आमने सामने बारी बारी से मर्द खुदा दाऊद के हुक्म के मुताबिक हमद और शुक्रगुजारी के लिए मुकर्रर थे.
You have read it, brother?
Yes, brother.
So, and you see, in Isaiah, I have said it several times in Isaiah 3, the women and children are leading the cult. The worship is not from God. It is always the elders in the church of the living God.
और यशायाह की किताब के अंदर ये बात मरकूम है कि जो औरतें और खवातीन और जो बच्चे हैं वो खुदा के लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दुरुस्त नहीं है.
You know that the spirit of prostitution are in the denomination. That's why they use children and women.
और आप देखें कि ये जो जुल्म सितम की या फांसी की रूह जो है वो इन डिनोमिनेशंस के अंदर, इंजीनों के अंदर मौजूद है.
There are a lot of denominations, and you know the so saying pastor who use children because they know that if they put women and girls, a lot of people will come. So this is really satanic.
और आप देखें कि बहुत सी डिनोमिनेशन ऐसी हैं जो इस बात को समझते हैं कि अगर ज्यादातर खवातीन जो है वो खिदमत का काम पर अंजाम देगी तो ज्यादा लोग जो है वो चर्चों के अंदर आएंगे, लेकिन ये बिल्कुल शैतानी सोच है और शैतानी काम है.
And then they will say, oh, let's make a rehearsal. We will gather. Yes, we'll make groups. And you see, they will gather together between themselves, between youngs, and it will be the destruction of the church.
और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी आइए हम रिहर्सल के लिए इकट्ठे होते हैं, ये प्लान काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं, तैयारी करते हैं. और जितना वो इकट्ठे होते हैं उतना शैतान जो है वो उनके अंदर ज्यादा काम करता है.
In fact, I said destruction of the church, but anyway, it was already a sign that it was not elders who were there. It was just comedians.
और मैंने जैसे बात कही कि ये तबाही का बाइस बनता है, तो इसका मतलब है कि वहां पर जो बुजुर्ग हैं वो मौजूद नहीं होते, बल्कि वहां पर सिर्फ अदाकारी करने वाले लोग मौजूद होते हैं.
When we speak of restoration, we must be restored to the Bible, not to fantasies.
और जब हम जो है वो बहाली की बात करते हैं तो हमने फिर ये नहीं कि खुद कार बनाई सोचों के बारे में बात करनी है बल्कि फिर बहाली की ही बात करनी है.
You remember I told you in Indonesian, I believe that comes from America, but sure, America, but also in Africa, a lot of women want to sing and to dance in the church and to preach.
और जब मैं डिनोमिनेशंस की बात करता हूँ तो मुझे इस बात का भी पता है कि बहुत सारी जो अमेरिका के अंदर खवातीन थी वो डांस करती थी और वो गीत गाती थी और वो चर्च को चर्च के अंदर ये वाली खिदमतें सर अंजाम दे रही थी.
And they would say, oh, David also danced. And I say, David danced because the Ark of the Covenant came back. The Word of God came back. That's why.
और वो कहते थे जी कोई बात जो दाऊद है वो भी तो डांस कर रहा था तो हम भी डांस करती हैं लेकिन दाऊद ने इसलिए डांस किया या वो इसलिए नाचा क्योंकि जो ऐत का संदूक था वो वापस आया था वो इसलिए नाचा था.
So in reality, the word of God gave us true joy.
और जो हकीकत है वो ये है कि खुदा का कलाम जो है वो हमें हकीकी खुशी बख्शता है.
And so if you see women who preach and want to dance, open the Bible and show them the verse of the Bible which speak, for example, let women keep silent in the church.
और अगर कोई आप देखते हैं कि ऐसी खातून जो चर्च के अंदर डांस करती है वो कुछ भी ऐसा करती है तो आप अपने कलाम मुकद्दस को खोलिए और उनको ये आयत दिखाएं जहां पर लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस के अंदर कि औरतें जो है वो मजमा के अंदर खामोश रहें.
Women who put makeup, make them read the story of Jezebel. Eaten by the dogs, the only woman painting.
और जो औरतें मेकअप करती हैं, आप उनको एजेबल की कहानी पढ़ाए कलाम मुकद्दस के अंदर से जिसको कुत्तों ने खाया या जिसके खून को कुत्तों ने चाटा था.
You know, Brother Branham said it proves that there is something evil in them and false in them. If they are makeup and jewels, etc., there is something bad in them and evil and liar in them and a false spirit.
और आप देखे कि कुछ भाई ऐसे थे और भाई ने और खुदा ने भाई को दिखाया कि कुछ भाई ऐसे थे बीच में जिनके अंदर झूठ भरा हुआ था या जिनके अंदर झूठी बातें बह रही थी या जो सिर्फ दिखावा करते थे.
And so you see the restoration goes on with joy, goes with joy in parallel with the joy.
और आप देखे कि बहाली जो है वो बिल्कुल खुशी के साथ साथ चलती है.
You can read, brother. Nehemiah 12:27.
हम पढ़ेंगे नहमिया 12 बाब उसकी 27वीं आयत. लिखा है 27 और यरूशलेम की शहर पनाह की तकदीस के वक्त उन्होंने लावियों को उनके सब जगहों से ढूंढ निकाला कि उनको यरूशलेम में लाए ताकि वो खुशी खुशी जहां जो सितार और बरबत के साथ शुक्रगुजारी करके और गाकर तकदीस करें.
Hallelujah. And also the 33.
इसके साथ हम 33 आयत में पढ़ेंगे अजरिया अजरा और मुसालम
43
आयत पढ़ेंगे 43 लिखा है और उस दिन उन्होंने बहुत सी कुर्बानियां चढ़ाई और खुशी की क्योंकि खुदा ने ऐसी खुशी उनको बख्शी कि वह निहायत शादमान हुए और औरतों और बच्चों ने भी खुशी मनाई सो यरूशलेम की खुशी की आवाज दूर तक सुनाई देती थी.
आमीन. एंड देन वी स्पीक अबाउट द रेस्टोरेशन ऑफ द टाइथ द गिफ्ट्स एंड द टास्क्स दैट ईच वन हैड टू डू.
और फिर आगे हम देखते हैं कि जो है कल में इबादत के इंतजाम थे जिसमें गायकियां थी और जो मुकासिद थे हर एक को अलग अलग सौंपे गए.
Mother, verse 44 is written that everybody was at their position, at their post of duty.
और 44वीं आयत के अंदर लिखा है कि हर किसी को उसके काम के लिए मुकर्रर किया गया.
We can read 44.
44 में लिखा है 44 उसी दिन लोग खजाने की और उठाई हुई कुर्बानियों और पहले फलों और दस जकियों की कोठरियों पर मुकर्रर हुए ताकि उनमें शहर शहर के खेतों के मुताबिक जो हिस्से काहिनों और लावियों के लिए शरा के मुताबिक मुकर्रर हुए उनको जमा करें, क्योंकि बनी यहूदा काहिनों और लावियों के सबब से जो हाजिर रहते थे खुश थे।
You see, always the joy that the position of each one are restored.
और आप देखें कि हमेशा उनके अंदर खुशी होती थी, वो जिस जिस भी मुकाम पर मुकर्रर हुए थे उन तमाम कामों के लिए।
And I repeat, it's very important. God sent a message to Brother William Branham, and this message prepared the second coming of Christ.
और मैं फिर दोहरा दूं आपको कि खुदा ने भाई विलियम ब्रैनम के अपना एक पैगाम दिया, और वो पैगाम ये था कि वो खुदावन की जो दूसरी आमद है उसके लिए लोगों को तैयार कर सके।
So in Acts chapter 3 is written that there will be a coming back of Jesus Christ, and so we speak about the restoration. Acts chapter 3.
और अमाल तीन बात के अंदर ये बात मरकूम है कि यीशु मसीह जो है वो दोबारा से आएगा और जो लोग हैं उसकी आमद के लिए तैयार होंगे।
एंड वी मस्ट स्पीक लाइक व्हेन वी स्पीक बिटवीन वन अनदर विद वन अनदर वी मस्ट से लाइक द ओल्ड टाइम लाइक एट द टाइम ऑफ अपोस्टल्स लाइक इन द टाइम ऑफ पीटर लाइक इन द टाइम ऑफ पॉल वी मस्ट कम बैक टू द टाइम ऑफ द फर्स्ट अपोस्टल्स।
और जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हम भी ऐसे ही हमेशा बात करते हैं और कहते हैं कि ऐसे ही जैसे रसूलों के वक्त में, जैसे उन पैगंबरों के वक्त में होता था, हमने भी उसी उन्हीं की तरह अपने आप को तैयार करना है।
Read brother verse, I will read in the Nehemiah, the verse after 12:46. Read a bit 12:46. I read. For long ago in the days of David, etc. See, you can read, brother, 45 and 46 if you want.
Okay. Nehemiah 12 bab uski 45 ayat ko hum padhenge, likha hai 45 aur 46 ayat ko padhenge 45. To wo apne khuda ke intizam aur taharat ke intizam ki nigrani karte rahe aur gaane walon aur darbanon ne bhi Daud aur uske bete Suleiman ke hukm ke mutabik aisa hi kiya. 46 क्योंकि कदीम जमाने से दाऊद और आसफ के दिनों में एक सरदार मुगनी होता था और खुदा की हमद और शुक्र के गीत गाए जाते थे।
Amen. You see, amen. You see, brother, it's not only said according to the command of David and his son Solomon. It's not only this.
पर आप देखिए कि ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि जैसे दाऊद गाता था या उसके बेटे आगे गाते थे।
Oh, you must add. For long ago in the days of David, etc., etc.
और आप देखे लिखा हुआ कि क्योंकि कदीम जमाना से, यानी कि दाऊद और आसफ के दिनों से ही था। ये बहुत पुरानी बात है जब शुक्रगुजारी के गीत गाए जाते थे।
So if someone asks you something about a doctrine, you must say like this: Before, yes, at that time, yes, long ago, at that time, just like this. You must be able to reply. Like this.
और कोई आपसे सवाल पूछता है तो आपने यही इसी तरह से जवाब देना है, और आपने इस काबिल बनना है कि आप भी कह सके कि ये अब की बात नहीं है बल्कि जिस तरह से पहले होता था, जिस तरह से कदीम जमाना में होता था, हमने भी वैसे ही बनना है और वैसे ही करना है।
Why baptized in the name of Jesus Christ in the water, and you say because at that time it was like this.
और क्यों यीशु मसीह ने पानी के अंदर बपतिस्मा लिया? और हम अब किसी को जवाब दे तो हम भी ऐसे ही कह सकते हैं कि जब उसने लिया तो हम भी वैसे ही करेंगे।
इफ द बाइबल इफ समवन से व्हाई डोंट यू हैव अ पास्टर, यू से बिकॉज़ एट दैट टाइम देयर वाज एल्डर्स इन एवरी लोकल चर्च।
और अगर कोई आपसे पूछे कि जी अभी आपके एल्डर्स क्यों होते हैं, तो आप जवाब दे उनको क्योंकि उस वक्त मुकामी कलीसियाओं के अंदर जो है वो elders होते थे, इसलिए अब हमारे अंदर भी elders होते हैं।
If someone asks you why women do not preach in your church, you say because at that time with the first apostle, women kept silence in the church.
और अगर आपसे कोई पूछे कि औरतें जो है वो क्यों खामोश रहती हैं, तो आप कहें कि उस वक्त जो है वो औरतों को जो है वो चर्च के अंदर वो खामोश रहने का हुक्म दिया गया था और अब भी रहती है,
etc., etc. Must always come back.
اس طرح سے اور بھی جو باتیں ہیں اور جو بحالی ہے وہ ہمیشہ کلام کے اوپر واپس جانا ہے.
Now brothers, sisters, chapter 13 of Nehemiah, the last chapter.
اب ہم بھائی اور بہنوں آخری باب کو دیکھیں گے جو نحمیہ کا آخری باب ہے 13th باب.
Let's begin by 1, 2, 3. On that day, they read from the book of Moses in the hearing of the people, and in it was found written that no Ammonite or Moabite should ever enter in the assembly of God, for they did not meet the people of Israel with bread and water, but hired Balaam against them to curse them. Yet our God turned the curse into a blessing. As soon as the people heard the law, they separated from Israel all those of foreign descent. Amen.
Nehemiah 13 باب کی پہلی سے تین آیت تک ہم پڑھیں گے. Verse 1. اس دن انہوں نے لوگوں کو موسیٰ کی کتاب میں سے پڑھ کر سنایا اور اس میں یہ لکھا ملا کہ امونی اور موابی خدا کی جماعت میں کبھی نہ آنے پائیں. Verse 2. اس لیے کہ وہ روٹی اور پانی لے کر بنی اسرائیل کے استقبال کو نہ نکلے بلکہ بلام کو ان کے خلاف اجرت پر بلایا تاکہ ان پر لعنت کرے پر ہمارے خدا نے اس لعنت کو برکت سے بدل دیا. Verse 3. اور ایسا ہوا کہ شریعت کو سن کر انہوں نے ساری ملی جلی بھیڑ کو اسرائیل سے جدا کر دیا. آمین.
Hallelujah. You see what it means spiritually, and we are going to read a lot of verses about this.
اور آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب روحانی طور پر کیا ہے. ہم بہت سی آیات کو جو ہے قرآن مقدس میں بھی پڑھنے والے ہیں.
You see the verse, the following verse.
آپ دیکھیں اسے جو اگلی آیت ہے.
Now before this, Eliashib the priest, who was appointed over the chambers of the house of our God, and who was related to Tobiah, prepared for Tobiah a large chamber where they had previously put the grain offering, the frankincense, the vessels, and the tithes of grain, wine, and oil, which were given by commandment to the Levites, singers, and gatekeepers, and the contributions for the priests. 6. While this was taking place, I was not in Jerusalem, for in the 32nd years of Artaxerxes, king of Babylon, I went to the king. And after some time I asked leave of the king and came to Jerusalem. And I then discovered the evil that Eliashib had done for Tobiah, preparing for him a chamber in the courts of the house of God. And I was very angry, and I threw all the household furniture of Tobiah out of the chamber. Then I gave orders that they cleansed the chambers, and I brought back there the vessels of the house of God with the grain offering and the frankincense.
Verse 4. اس سے پہلے الیاسب کاہن نے جو ہمارے خدا کے گھر کی کوٹریوں کا مختار تھا توبیہ کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے Verse 5. اس کے لیے ایک بڑی کوٹری تیار کی تھی جہاں پہلے نظر کی قربانیاں اور لبان اور برتن اور باج کی اور میں کی اور تیل کی بیجکیاں جو حکم کے مطابق لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں کو دی جاتی تھی اور کہنوں کے لیے اٹھائی ہوئی قربانیاں بھی رکھی جاتی تھی. 6. پر ان ایام میں میں یروشلم میں نہ تھا کیونکہ شاہ بابل ارتشخستہ کی تبیشیوں برس میں بادشاہ کے پاس گیا تھا. کچھ دنوں کے بعد میں نے بادشاہ سے رخصت کی درخواست کی. 7. اور میں یروشلم میں آیا اور معلوم کیا کہ خدا کے گھر کے صحنوں میں توبیہ کے واسطے ایک کوٹری تیار کرنے سے الیاسب نے کیسی خرابی کی ہے. 8. اس سے میں نہایت رنجیدہ ہوا, اس لیے میں نے توبیہ کے سب خانگی سامان کو کوٹری سے باہر پھینک دیا. 9. پھر میں نے حکم دیا اور انہوں نے ان کوٹریوں کو صاف کیا اور میں خدا کے گھر کے برتنوں اور نظر کی قربانیوں اور لبان کو پھر وہیں لے آیا. Amen.
Amen. So you understand what happened. People who are not at the service of God wanted to do a service for God, but it was not God's will, like the Brother Branham said in his sermon.
और आप देखें कि क्या हुआ था वो ऐसे ही था कि कुछ लोग जो खुदा की खिदमत करना चाहते थे लेकिन खुदावंत की मर्जी नहीं थी कि वो खुदा की खिदमत करे वो खुद से खुदा की खिदमत को सरंजाम देना चाहते थे और यही काम जो है वो ब्रदर फ्रैंक के वक्त में भी हो रहा था
Some people say, oh, I like this guy, or I like this brothers, or I like these sisters, or it is my family. And they put them in the place of commandment in the church of God. This is from the devil.
और कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि मुझे ये शख्स पसंद है मैं इसको ये खिदमत दे देता हूँ मुझे ये शख्स पसंद है मैं इसको फलाने खिदमत देता हूँ और वो खुदा के घर में वो खुद के बनाए हुए हुक्मों के मुताबिक वो खिदमत को सरंजाम देते हैं और लोगों को खिदमतें देते हैं
How many times I've seen in Pakistan?
और मैंने कितनी दफा ये पाकिस्तान के अंदर भी देखा है
young boys, young girls on the pulpit, placed by people who are not spiritual at all.
नौजवान बेटे जो है वो पुलपट के ऊपर उनको खड़ा कर दिया जाता है जो उनकी जगह नहीं है
And sometimes they even give the pulpit to people who present themselves like intellectual. Oh, I've got my diploma of theology, but it means absolutely nothing. That nothing but satanic doctrines.
और बार दफा ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पुलपट के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा जहीन और काबिल समझते हैं वो कहते हैं कि हम मेरे पास तो डिप्लोमा है मेरे पास तो प्लॉट डिग्री है
Because I told you God is in the heart, not in the brain.
क्योंकि मैं आपको बता दूं जो खुदा है वो हमारे जहनों के अंदर नहीं होता
And the school of theology is,
हमारे जहनों को इस्तेमाल करता है
The school of theology is to put it in the brain, but the heart remains without the spirit of God.
लेकिन जो theology के स्कूल है वो हमेशा अपने जहन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन खुदा जो है वो हमेशा हमारे दिलों में रहना पसंद करता है और हमारे दिलों के अंदर होता है
But we must be like Nehemiah and God must have people like Nehemiah and Esdras.
लेकिन हम जो है हमें नहमिया की तरह बनना और खुदा को जो है वो नहमिया और एज्रा के वक्त जो लोग थे खुदा को उस तरह के लोग पसंद आते हैं
To be able to make reproach, like for example, in the 13th chapter, verse 11, we must be able to reprove, to correct things.
और तेरी बात यानी आपकी तरह हमें होना है कि हम इस काबिल हों कि हम चीजों जो गलत चीजें हैं उनको दुरुस्त कर सके.
We must be able to have the courage to say. You are not at the correct post. Go out of this pulpit. Go out of this church. Don't stop preaching stupidities. You must be able to say this.
हम इस काबिल होने चाहिए कि हम ये बात कह सके कि तुम ये काम जो है वो दुरुस्त नहीं कर रहे हो या ये काम जो है वो ठीक नहीं है हम इस काबिल हो कि हम उनकी दुरुस्तगी करने वाले हो सके
In the chapter 15, it's written that they do not respect the Sabbath. Sabbath, it means the rest in Jesus Christ.
और आप अपने बाप के अंदर देखें कि वो सब्बत का एहतराम नहीं कर रहे सब्बत का मतलब क्या है कि खुदावंद के आराम का दिन या खुदावंद के अंदर आराम करना
When you see people who try to find, I don't know, rules and laws and morals and try to do something with this in the church, it is not the rest in the Christ. Rest in Christ, it means that Jesus Christ has done everything for us.
और आप देखें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चर्च के अंदर जो है वो खुद के बनाए हुए काम करना चाहते हैं या वो खुद से जो है वो हुकूमत करना चाहते हैं चर्च के अंदर लेकिन खुदा का जो सब्बत का दिन है वो हुकूमत करना नहीं है
For example, if you read the verse 21,
मिसाल के तौर पर जब आप 21वीं आयत को पढ़ते हैं
You see, people wanted to make business during the Sabbath.
लोग जो है वो सब्बत के दिन जो है वो काम करना चाहते थे.
It's written, but I warned them. You see, we must be able to correct and to warn people. It's written in the Bible.
और लिखा हुआ है कि मैंने उनको रोका या मैंने उनको टोका.
You see, you can read the, I don't know, for example, the verse 23, we can read, there's also, he makes reproach. Verse
23.
See verse 11, there's a lot of verses where you see that we must correct. We must say something.
और आप यारवी बारवी और बहुत सी आयात ऐसी हैं कलाम मुकद्दस के अंदर जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि हमने उनकी दुरुस्त भी करनी है, हमने उनको रोकना है गलत काम करने से.
But now this you meditate yourself. But now we'd like to more insist of the last verses.
और ये आप खुद से इसके ऊपर गौर फोकस करें, लेकिन अभी हम ज्यादातर तवज्जा जो है वो आखिरी आयात के ऊपर देंगे.
23 until the end.
कहीं से लेकर आखिरी आयत तक.
Remember, this is Old Testament, and we must find, by God's grace, the way to practice, to put in practice in the New Testament, in spirit.
और आपने इस बात को याद रखना है कि ये पुराना अहदनामा है और खुदावंद के फजल से हमने इसको अमली इतलाक पर लेकर आना है, अपनी जिंदगियों के ऊपर इतलाक करना है खुदा के रूह के अंदर, नए अहदनामा के अंदर.
23 until the end. In those days also I saw the Jews who had married women of Ashdod, Ammon and Moab. And half of their children spoke the language of Ashdod, and they could not speak the language of Judah, but only the language of each people.
और उनके बच्चों की जुबान आदि अश्दूदी थी और वो यहूदी जुबान में बात नहीं कर सकते थे, बल्कि हर कौम के बोली के मुताबिक बोलते थे.
And again, you see, reproach. I reproached them. I confronted them. You see, 25. And I confronted them and cursed them and beat some of them and pulled out their hair. And I made them take an oath in the name of God, saying, you shall not give your daughters to their sons, or take their daughters for your sons or for yourselves.
और फिर देखे कि वो उनकी दुरुस्ती कर रहा है. 25वीं आयत के अंदर 25. सो मैंने उनसे झगड़ कर उनको लानत की और उनमें से बास को मारा और उनके बाल नोचे, नोच डाले, उनको खुदा की कसम खिलाई कि तुम अपनी बेटियां उनके बेटों को ना देना और ना अपने बेटों के लिए उन और ना अपने लिए उनकी बेटियां लेना.
So much was carnal. He will beat people in the church, but this was with the Old Testament.
कुछ लोग जो है वो जिस्मानी तौर पर इन सारी बातों को लेते हैं, लेकिन ये पुराना अहदनामा है.
Verse 25, brother, pulled and I pulled out their hair. We will not do it in the New Testament.
और यहाँ पर लिखा हुआ 25वीं आयत के अंदर कि उन्होंने मैंने उनके बाल नोच डाले. हम नए अहदनामा के अंदर या चर्च के अंदर ऐसा नहीं कर सकते रूहानी तौर पर.
But I know in some denominations they do carnal things. They cast out demons with punching people, so they are very carnal people. Not carnal, even satanic people in the churches.
मैं इस बात को जानता हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो जिस्मानी तौर पर जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बदबूएं होती हैं, वो जिस्मानी तौर पर लोगों को वो निकालने के लिए उनके ऊपर मुक्के मारते हैं, उनके बाल पकड़ते हैं, लेकिन ये ऐसा दुरुस्त नहीं है.
26. Did not Solomon, king of Israel, sin on account of such women? Among the many nations, there was no king like him. And he was beloved by his God. And God make him king over all Israel. Nevertheless, foreign women made even him to sin.
26वीं आयत लिखा है, क्या शाह इसराइल सुलेमान ने इन बातों से गुनाह नहीं किया? अगरचा अक्सर कौमों में उसकी मानद कोई बादशाह ना था, और वो अपने खुदा का प्यारा था, और खुदा ने उसे सारे इसराइल का बादशाह बनाया, तो भी अजनबी औरतों से उसे भी गुनाह में फंसाया.
Shall we then listen to you? 27. Shall we then listen to you and do all this great evil and act treacherously against our God by marrying women, foreign women?
So, क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अजनबी औरतों को ब्याह कर अपने खुदा का गुनाह करें?
And one of the sons of Jehoiada, the sons of Eliashib, the high priest, was the son-in-law of Sanballat the Horonite. Therefore, I chased him from me.
और अलियासब सरदार कहन के बेटे यदीदा के बेटों में से एक बेटा हरूनी सनबलत का दामाद था, इसलिए मैंने उसको अपने पास से भगा दिया.
Remember, Sanballat was the enemy of Jesus Christ, of the people Israel were building.
और आपको याद है कि सनबलत जो है वो दुश्मन था, जब वो उसको तामीर कर रहे थे तो ये उनके खिलाफ था.
29, remember them, O my God, because they have desecrated the priesthood and the covenant of the priesthood and the Levites.
29, ayat, ay mere khuda, unko yaad kar, isliye ki unhone kahanat ko aur kahanat aur laviyon ke ahd ko napak kiya hai.
Thus I cleansed them from everything foreign, and I established the duties of the priests and Levites, each in his work. 31, and I provided for the wood offering at appointed times, and for the first fruits. Remember me, O my God, for good.
30, यूं ही मैंने उनको कल अजनबियों से पाक किया और काहिनों और लावियों के लिए उनकी खिदमत के मुताबिक. 31, और मुकर्रा वक्तों पर लकड़ी के हदीये और पहले फलों के लिए हल्के मुकर्रर कर दिए. ऐ मेरे खुदा, अब भलाई के लिए मुझे याद कर. आमीन.
हालेलुया. यू रिमेंबर इन द स्टोरी ऑफ एस्थर, द बाइबल सेड दैट शी वाज डिसओबीडिएंट एंड शी वाज पुट आउट बिफोर द फेस ऑफ द किंग.
और आपको ये कहानी याद होगी एस्थर की, कि वो पहले जो है वो ताबेदार नहीं थी और उसको जो बादशाह है उसके जोर में से निकाल दिया गया.
And it was said that the husband, small or great, will be the king, will be the master of his house.
और लिखा हुआ कलाम कदस के अंदर के शोहर जो है बेशक वो छोटा है, बेशक वो बादशाह है, वो घर का सरबराह है.
And the language will be the language of the man.
और जो मर्द की जुबान है वो मर्द की तरह ही होनी चाहिए.
Now in the New Testament we speak of spiritual language, spiritual language.
अब नए अधिनामे के अंदर हम जो है वो रूहानी जुबान की बात करते हैं.
It's not a problem if we speak 2, 3, 4 languages in a family. We don't speak of carnal things. We speak of spiritual things.
ये मसला नहीं कि हमें खानदान के अंदर 3, 4, 5 जुबानें बोलते हैं, बल्कि जो जुबान है वो रूहानी होनी चाहिए. रूहानी जुबान क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए?
So we are going to read a few verses which speak about the separation from unbelief.
और हम कुछ आयात पढ़ेंगे जो हमें अलग करती हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि ईमान ना लाना या गैर ईमानदार आना बात क्या होती है.
And this will be the restoration, part of the restoration in the New Testament for the bride church.
और ये बहाली का एक हिस्सा है जो खुदा की दुल्हन की कलीसिया है उसका.
Brother Samuel, 1 Corinthians 1.
हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसकी पहली आयत, पहला बाब.
So one, you can read, brother, 1 Corinthians 1, verse 10.
Pehla Corinthians, pehla baab, uski 10th ayat.
You read.
Okay. Pehla Corinthians, pehla baab, uski 10th ayat, verse 10. Ab ae bhaiyo, Yeshu Masih jo humara khudavand hai, uske naam ke wasila se, main tumse iltimas karta hoon. कि सब एक ही बात कहो और तुम में तफरके ना हो, बल्कि हम बहुत यकदिल और यकराय होकर कामिल बने रहे।
I pray, brothers, that there would be no divisions among you.
और मैं दुआ करता हूँ भाइयों कि आपके अंदर भी तफरके ना हो।
But united in the same mind.
बल्कि एक ही जहन के साथ आप यक जा रहे, इकट्ठे रहे।
To have a same opinion.
एक ही राय के साथ।
See? So this is already something that is extremely important. It's the unity in the church.
और ये एक बहुत ही खास चीज है जो चर्च के अंदर अहम और जरूरी है, और वो चर्च के अंदर इत्तेहाद है।
And you know the famous verse. Some say, I am, I follow Paul, I follow Apollos, and I follow Cephas. No, we must follow Jesus Christ.
और आप देखें कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं पौलुस को पैरोकार हूं, मैं अपोलुस का पैरोकार हूं, लेकिन हमें यीशु मसीह का पैरोकार होना चाहिए।
Verse 13. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul?
लिखा है 13वीं आयत, क्या मसीह बट गया, क्या पालूस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ, या तुमने पालूस के नाम पर बपतिस्मा लिया।
It is a proof that the baptism must be done in the name of Jesus Christ.
और ये इस बात का सबूत है कि जो बपतिस्मा है वो यीशु मसीह के नाम पर होना चाहिए।
So you see, we must pay attention for the people who want to divide the church and who want to put division in the church. Be careful.
तो आप देखें कि हमें इस बात के ऊपर तवज्जो देनी है और उन लोगों से मुहतात रहना है जो चर्च के अंदर तफरीकों का काम करते हैं।
You take Philippians.
आप ले फिलिपियों।
You can take chapter 2.
दो बात।
Verse 2.
उसकी दो आयत।
Can read 1 and 2. So if there is an encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord, and of one mind. 3. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each one of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Amen.
Amen. Philippians 2, verse 1, we will read the first verse. It is written, verse 1, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत के दिल जमाई और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्द मंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि ये यक दिल हो, यक्षा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो। वस्त्री तफिरके और बेजा फकर के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतने से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। आमीन।
हालेलुया। यू सी, अगेन वी स्पीक अबाउट द यूनिटी।
आप देखें कि यहां पर फिर हम देख रहे हैं इत्तेहाद को।
इफिशियंस 4:3-4।
इफिशियंस 4 बाब उसकी तीसरी और चौथी आयत हम देखेंगे।
1-4। आई देयरफॉर अ प्रिजनर फॉर द लॉर्ड urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all in all. Amen.
Amen. Exodus 3 verse 1, we will read the first verse. It says, verse 1, "Pas main jo khudaavand mein qaidi hoon, tumse iltimaas karta hoon, ke jis bulaave se tum bulaaye gaye the, uske laayak chaal chalo." Verse 2, "Yani kamaal fitni aur hilm ke saath amal karke mohabbat se ek dusre ki bardasht karo." Verse 3, "Aur isi koshish mein raho ke rooh ki yagangi sulah ke band se bandhi rahe." Verse 4, "Ek hi badan hai aur ek hi rooh, chahta tumhe jo bulaaye gaye the, अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। वर्स 5, एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा है। वर्स 6, और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सब के दरमियान और सबके अंदर है। आमीन।
हालेलुया। And two of course which goes with the thing that goes with unity, it is also the separation.
और खुदा के साथ इत्तेहाद यही है कि हम जो दूसरी चीजें हैं उनसे अलहदगी करें।
You know, there's a verse which says that there are bad companies. We must avoid bad companies. You remember this in 1 Corinthians, who can read it? 1 Corinthians 15.
पहला कोरिन्थियों 15 बाब के अंदर आयत है कि हम जो बुरी सोचते हैं उनसे दूर रहें। हम इसको पढ़ते हैं।
Because it's what is the use if we are together and then from Monday to Saturday you frequent denomination and you listen to them. If you preach to them, it's okay, but if you listen to them, so you would be foolish.
तो क्या फर्क होगा? मिसाल के तौर पर अभी हम एक हफ्ते में एक दिन इकट्ठे होते हैं, उसके बाद आप पूरा हफ्ता सोमवार से लेकर अतवार तक आप जो है वो दूसरी तंजीमों को सुनते हैं, तो क्या फायदा होगा? आप उनको कलाम सुनाते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप उनको सुनते हैं तो ये तो बेवकूफाना बात है।
So you see there are verses which speak of the separation. Let's read it. So we read it the 15, you can read it brother, 15:33 if you want quickly. 15:33, I read it. 33 is written, "Do not be deceived. Bad company ruins good morals." Amen.
Yep. Amen. पहला कोरिन्थियों 15 बाब 33 आयत में लिखा है, verse 33, "त्रेब न खाओ बिगाड़ देती है." Amen.
Can you repeat again, brother?
त्रेब न खाओ बुरी सोबते अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं।
Amen. You know the story of there was a church on television I saw. There were women who wanted to bring the people of the world into churches.
और आपको ये कहानी शायद याद होगी कि टेलीविजन के ऊपर एक जो है वो चलता था प्रोग्राम, जिसके अंदर एक औरत जो है वो लोगों को खुदा के पास लाने की जो है वो तालीम देती थी।
तो इन डिनोमिनेशन दे डू इट फॉर एग्जांपल इन द बार इन द कैफे यू नो इन द डांसिंग हॉल।
और डिनोमिनेशंस के अंदर उन्होंने क्या बनाया था, या बार्स के अंदर या जो डांस की जगह बनी होती है उनके अंदर वो करते हैं ऐसा।
But you cannot frequent or be always in bad companies, people lying, people cheating, people drinking, and then you think that you are Superman and you will do something in these places. No, it's not possible.
और बुरी सोचते क्या होती है? कुछ लोग जो है वो बुरे काम करते हैं, बुरी चीजें इस्तेमाल करते हैं, बुरी आदतें होती हैं उनकी, और फिर उसके बाद वो ऐसी जगहों पर जाते हैं और वो समझते हैं कि वो शायद सबसे खास लोग वही हैं।
Once every 6 months like this, or once every 3 months, because you are at school or because you are at work, you are invited, okay. But be careful, if it becomes a habit, you are already in the hands of the devil.
और अगर चलो 6 महीने में एक दफा अगर आप किसी मजबूरी के तहत आपको वहां पर दावत दी जाती है, वहां पर जाते हैं, तो चलो वो मजबूरी है, लेकिन जब आप लगातार ऐसे काम करते हैं तो फिर वो एक आदत बन जाती है, और आदत जो है वो आदत ही होती है.
And concerning the separation, we have read several times in Pakistan 2 Corinthians 6. You can read it, brother.
और जब हम जब अलहदगी की बात करते हैं तो हम ने बहुत दफा ये बात पढ़ी है दूसरा कोरिन्थियों 6 बाब के अंदर.
And this is related with the putting apart of the bride of Jesus Christ.
इसका ताल्लुक है उस हिस्से के लिए जो यीशु मसीह का यीशु मसीह की दुल्हन है उनके लिए है.
2 Corinthians 6, we can read 14 until 18.
दूसरा कोरिन्थियों 6 बाब 14 से 18 तक हम इसको पढ़ेंगे.
Do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? What accord has Christ with Belial? Or what portion does a believer share with an unbeliever? What agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of living God, as God said, I will make my dwelling among them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore go out from their midst and be separate from them, says the Lord, and touch not unclean thing, and I will welcome you, and I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Amen.
Amen. लिखा है दूसरा कोरिन्थियों 6 बाब उसकी 14 आयत वर्स 14, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तरीकी में क्या शराकत. 15, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का वास्ता. 16, और खुदा के मुकद्दस को बुतों से क्या मुनासिबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मुकद्दस है, चुनाचा खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उन पर चल फिरूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे. 17, इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीजों को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर दूंगा. 18, और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे. ये कादरे मतलब खुदावंद का कॉल है. आमीन.
हालेलुया. यू सी द सेपरेशन इज अ पार्ट of the message of restoration.
आप देखें कि अलहदगी जो है ये एक हिस्सा है और ये आखिरी वक्त के पैगाम का एक हिस्सा है कि इनसे अलग रहना.
For example, you observe denomination, their actions, their habits, what they do every Sunday, and if in the message you do the same, you are not separated. You are still in a denomination.
आप देखें कि denominations के अंदर हम कहते हैं कि जी हम इनसे अलग हैं, हम हमारे इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन्हीं के साथ किसी न किसी तरीके के साथ जुड़े होते हैं, तो फिर हम वो अलहदगी हमने अभी तक इख्तियार नहीं की.
And if people do not change when they say, "Ah, I am the message," if they do not change, it means that they are still in the darkness.
और अगर लोग जो कहते हैं कि जी हम तब्दील हो चुके हैं क्योंकि हम मैसेज के अंदर हैं, लेकिन फिर भी वो तब्दील नहीं हुए होते, तो इसका मतलब यह है कि वो अभी तक तारीकी के अंदर है.
Because the message of the hour, Brother Frank has distributed the message around the world. It is a light. It is a light which separates light and darkness.
क्योंकि ये जो आखिरी वक्त का पैगाम है, इसको ब्रदर ब्रैनम ने यही बात बताई है कि ये तारीकी के अंदर एक रोशनी है.
It is a light that Jesus is the light, clearly. I am the light of the world, he said.
और यीशु मसीह जो है वो रोशनी है और वो दुनिया का नूर है.
And it's normal because written at the beginning was the word was God and was made flesh. So Jesus is God. Jesus is the light.
और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम जो है वो रोशनी था, और यीशु मसीह जो है वो रोशनी है, वो नूर है.
Brother, can you read the first verse of the Bible?
हम पढ़ेंगे कलामे मुकद्दस की पहली आयत.
One to four, brother. Genesis 1:1-4. We can read it.
पैदाइश पहला बाब उसके एक से चार आयत हम पढ़ेंगे.
Yes, brother.
Urdu? Only Urdu?
Yeah, or Urdu, yes.
Okay. लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर पैदाइश एक बाब उसकी पहली आयत. खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया. वर्स 2. और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूप पानी की सतह पर बिंबश करती थी. वर्स 3. और खुदा ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई. वर्स 4. और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया.
हालेलुया हालेलुया. You see, it's very simple. The Bible is very simple if you want to be simple.
पर आप देखें कि जो बाइबल है ये बहुत ही सादा है अगर आप इसको सादगी के साथ लेते हैं तो.
And Brother Frank said often, everything is right for those who have the heart right.
और भाई फ्रैंक ने बहुत दफा इस बात को कहा कि ये उनके लिए लिखी गई है, ये उनके लिए दुरुस्त ठहरती है जिनके दिल जो है वो दुरुस्त है.
So you are listening to me now. You are listening. Listen, if I say to you, Jesus Christ is the light, you understand this?
और अभी आप जितने मुझे सुन रहे हैं आप इस बात को भी सुन रहे हैं, अगर मैं कहूं कि यीशु मसीह जो रोशनी है तो वो रोशनी है, क्या ये दुरुस्त है?
If I say the light is Jesus Christ. The light is Jesus Christ. If I say the light is Jesus Christ.
और अगर मैं ये बात कहूं कि यीशु मसीह जो है वो रोशनी है तो वो रोशनी है.
This you understand?
आप इस बात को समझ सकते हैं?
Now, you go again, as I said at the beginning, on internet.
और आप मैं जैसे मैंने शुरुआत में कही बात अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाए.
Or for example, you go in the house of brothers in the message.
या मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसे भाई के घर जाए जो मैसेज के अंदर हो.
And you recently you see yourself, for example, there are discussion, debates.
और पिछले दिनों में आपने कुछ सुनी होगी उनकी जो बातें हैं, उनकी जो बहस है, वो वासा जो उनका था वो भी आपने सुना होगा.
You know what is a debate?
आप जानते हैं कि debates या बहस क्या होती है?
You see, recent these last days, I don't know if you have this in Pakistan. You have a lot of discussion between Christians and Muslims.
और मुझे नहीं पता लेकिन शायद आपने ये बातें सुनी हैं तो बहुत सारी जो debates थी वो पाकिस्तान के अंदर हुई पिछले दिनों में Christian और मुसलमानों के दरमियान.
And so I wanted to tell you that some people who say yeah, I believe in Jesus. I am the message. Yeah, okay. They say it in the brain. And then you see them and you understand that they do not believe in the message. You have some people, they say with the mouth, I believe Jesus is the light. I believe the word of God. I believe that I am the message. I believe Brother Branham. But after you must see what they do.
आप देखिए कि आपके दरमियान बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात के ऊपर कहते हैं, ये बात कहते हैं कि जी मैं यीशु मसीह के ऊपर मान लेता हूँ, मैं यीशु पर मान लेता हूँ, या जो भी ये आखिरी वक्त का पैगाम है, इन सारी चीजों के ऊपर ईमान रखता हूँ.
Tell me, how is it possible that people who say they are Christian enter in discussion and debates? How is it possible?
आप देखें कि कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये लोग जो कहते हैं कि हम ईमान रखते हैं, ये उन डिबेट्स का हिस्सा बनते हैं या उन बहस का हिस्सा बनते हैं?
And I tell you my testimony. When I heard the word for the first time, I was 15 years old. I believe. No discussion, no debates.
और मैं आपको बता दूं, जब मैंने पहली दफा ये लव चुना तो मैंने सबसे पहली बात ये कि मैं अब और बहस या मुबासा इस तरह की कोई भी काम नहीं करूंगा.
When I hear brother Frank, he was in my city, directly, I believe, and I did not discuss, I raised my hands also for his prayer.
जब मैंने अपने शहर के अंदर भाई फ्रैंक का कलाम सुना तो मैंने फौरन से उसके ऊपर ईमान लाया और मैंने फौरन से उनके उस पैगाम के ऊपर मैं मुत्तफिक हुआ.
And I spent 3 years in Pakistan or years in here, whatever. When you speak, yourself will speak, you must directly see if someone wants to enter a discussion, if someone wants to discuss the message or discuss what you say, don't discuss with him. Let him alone. And don't invite him in the church.
और मैंने 3 साल 3.5 साल पाकिस्तान के अंदर गुजारे और अब भी गुजार रहा हूँ. तो आप फौरन से इस बात को समझ जाते हैं कि जब कोई बहस करना चाहता है तो आप फौरन से इस बात को समझ जाते हैं. आप उनकी उस बहस का हिस्सा मत बने और साफ तौर पर उनको इस बात से जो है वो मना कर दे कि हम बहस नहीं करना चाहते.
Let's take a carnal example. You are building a house.
एक जिस्मानी मिसाल लेते हैं. मिसाल के तौर पर आप एक घर बना रहे हैं.
You put a brick on a brick, another brick, one by one.
आप एक-एक करते करते ईंट के ऊपर ईंट रखते जाते हैं.
And your brother of the church come and put out the bricks, and put out the bricks, and put out the bricks, one by one. So what you do, he destroy.
और आप ही का कोई भाई वो आता है और जो आपने ईंटें रखी होती हैं वो एक एक करके उन ईंटों को निकालना शुरू कर देता है, तोड़ना शुरू कर देता है. तो फिर आप क्या करेंगे?
And someone in the spiritual, someone who disobey, someone who discuss and don't want to obey, is this like this? He's the brother we have read recently. He's the brother of the destroyer. He's destructing the house of Christ because it is not so, does not believe.
इसी मिसाल को जब हम रूहानी तौर पर लेते हैं, मिसाल के तौर पर कोई ऐसा भाई आता है कि वो चर्च में तबाही का बायस बनता है या बहस करना चाहता है या इस काम को रोकने की कोशिश करता है, तो फिर हम रूहानी तौर पर उसको जो है वो रूहानी तबाही का बायस समझते हैं.
Now, brother, that we finish this chapter of
Nehemiah. इस नहमिया के आखिरी बाब को खत्म करने वाले हैं.
Grosso modo, for the general way of doing, I would like to read something for your general way of walking, your general way of doing, your general way of working in the house of God.
और मजमूई तौर पर हम इस बात को देखते हैं कि हम आप किस तरह से जो है वो खुदा के घर के लिए काम कर सकते हैं, खिदमत कर सकते हैं, किस तरह से उसके साथ चल सकते हैं. रूहानी तौर पर हम इस बात को देखते हैं.
First, I was listening, brother, to the sermon that I preached in Pakistan 22 when we were listening, when we were studying the tabernacle.
और मैं सुन रहा था उस प्रोग्राम को जो मैंने पाकिस्तान के अंदर हमने सीखा खैमा इज्तिमा के बारे के अंदर.
And the introduction was God loves his people.
और उसका जो अनुमान था तारुफ था वो ये था कि खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता है.
God wanted to dwell among his people.
खुदा अपने लोगों के अंदर रहना चाहता है.
And the work of the Satan is to divide, to put division, to put a distance between God and his people.
और खुदा जो शैतान का काम है वो क्या है? वो खुदा के लोगों के अंदर और खुदा के अंदर तफरीके पैदा करना है.
In the New Testament, God wants to dwell in us, in the Spirit.
अहदनामा के अंदर खुदा हमारे दरमियान बसना चाहता है रूह की सूरत में.
In his church, composed of brothers and sisters.
और उसका जो कलीसिया है वो भाई और बहनों के ऊपर मुश्तमिल होती है.
And now God, Satan wants to divide and to destroy the brothers and sisters who want to enter in the restoration.
और शैतान जो है उन भाइयों और बहनों को जो है वो अलग करना चाहता है, उनमें तफरका डालना चाहता है जो उसकी आमदेसानी के लिए तैयार होना चाहते हैं.
And so, for your general way of working, I would like to give you advice.
और आम तौर पर जो आप काम करते हैं, उसके लिए आपको मशवरा देना चाहता हूँ.
First, unity of the elders.
सबसे पहला काम यह है कि elders के अंदर इत्तेहाद होना चाहिए.
Don't do nothing like a superman. Oh, I'm going to baptize people. Oh, I'm going to go there. No, be united and don't believe you are superman.
और कभी भी सुपरमैन की तरह अपने आप को सबसे मंत्रित या बड़ा मत करें कि मैं जा रहा हूं, मैं इतने लोगों को बपतिस्मा दूंगा, मैं फला काम करूंगा. और कभी भी ऐसा मत करें.
Because even the Bible say, Paul said, God has not sent me to baptize. You remember this.
और पालूस भी एक बात मुकदस के अंदर कही, आपको याद होगी, पालूस कहता है कि मुझे खुदा ने बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा.
But all together, 2, 3, 4 elders go and preach together.
लेकिन 3 या 4 जो एल्डर्स हैं वो जाएं, वो इकट्ठे मुत्तफिक होकर जाएं और कलाम सुनाए लोगों को.
एंड देन यू आई गिव यू द सेकंड एडवाइस टू टिमोथी.
और दूसरी जो दूसरा जो मशवरा है वो मैं आपको दूंगा, दूसरा तिमोथियस.
एंड इट्स व्हाई आई सेड टू यू, हाउ इज इट पॉसिबल दैट पीपल हु बिलीव इन मैसेज begin to enter in quarrels, in dispute, in debates, even online, even on YouTube. It's not possible.
और फिर मैं आपसे कहूंगा कि वो लोग जो कहते हैं कि हम खुदा के लोग हैं, वो किस तरह से बहस में बहसों का हिस्सा बन जाते हैं, यहां तक कि ऑनलाइन भी वो एक दूसरे के साथ बहस कर रहे होते हैं.
A brother, if you are patient with me, we finish it by this and this applies not only to elders but to each Christians and sisters and brothers.
अगर आप थोड़ा सा इत्मीनान मेरे साथ रखेंगे तो मैं इसके साथ इसको खत्म करूंगा. ये सिर्फ elders के ऊपर apply नहीं होता, बल्कि तमाम जो भाई और बहन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, ये हम सब पर जो है वो इतलाक होता है.
Brother, 2 Timothy 2, I begin by 14, and brother, you read one by one after me. Remember 2 Timothy 2,
14.
Remind them of these things and charge them before God not to quarrel about words, which does no good, but only ruins the hearers.
ये बातें उन्हें याद दिला और खुदावन के सामने ताकीद कर के लफ्जी तकरार ना करें, जिससे कुछ हासिल नहीं बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं.
Brothers, I'm sorry to say that one of the things that was which hurt me a lot in Pakistan is people who speak too much for nothing without having never read the Bible and who wanted to preach. This was very hurting my heart.
और भाई, एक चीज जो मैं बड़े अफसोस के साथ आपको बताना चाहूंगा, जो पाकिस्तान में मुझे सबसे ज्यादा जिस तरह मेरे दिल को तकलीफ दी, वो ये थी कि लोग.
हेलो
बाद में जो बहुत
Brother?
Yes.
We have been cut. Could you please repeat?
मैं ये बात को आपको दोहराना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर इस बात से बहुत तकलीफ हुई, जो को जो है वो दूसरे तक पहुंचाते हैं और उनको खुद कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो मुनाफी करना चाहते हैं. इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर दुख दिया.
And a lot of inventions in the brain, inventions. Oh, I heard this, I heard that.
और बहुत सी इजादात उन्होंने अपने जहन के अंदर ही बना रखी हैं, जी मैंने ये सुना, मैंने इस बात को देखा, मैंने बात सुनी.
God has sent Brother Frank with an audible voice, and you know one of the sentences that he said very often, I hate What interpretations?
और खुदावंद ने उन्हें अपने काम के लिए चुना और बहुत दफा उन्होंने एक बात कही और उन्होंने कहा कि मुझे खुद की बनाई हुई तफसीरों से नफरत है.
So if you cannot read the Bible, stop, don't try to preach, please.
और अगर आप बाइबल को पढ़ते नहीं हैं तो फिर कोशिश मत करें कि आप इसकी मुनादी करें.
15. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth.
15वीं आयत के अंदर लिखा है, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाए.
But avoid irreverent babble, for it will lead people into more and more ungodliness.
लेकिन बेहुदा बकवास से परहेज कर क्योंकि ऐसे शख्स और बेदीनी में तरक्की करेंगे.
Exactly what I said, babble.
और ये वही है जो भी मैंने कहा, बेहुदा बकवास.
17. And their talk will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus.
और उनका कलाम अकाला की तरह खाता पीता चला जाएगा. Hymenaeus और Philetus उन्हीं में से है.
You remember when I came in the church in Morga, some people left. I can say their names like this.
और आपको याद है जब मैं मोरगा में आया तो कुछ लोग जो थे वो चर्च को छोड़कर चले गए थे.
Because they wanted to preach. They wanted to preach what? Stupidities.
क्यों? क्योंकि वो भी कलाम सुनाना चाहते थे. और कलाम क्या सुनाना चाहते थे? बेवकूफाना बातें.
But have swerved from the truth, saying that the resurrection has already happened. They are upsetting the faith of some.
वो ये कहकर क़यामत हो चुकी है हक से गुमराह हो गए बाज का ईमान बिगाड़ते हैं.
But God's firm foundation stands, bearing this seal. The Lord knows those who are His, and let everyone who names the name of the Lord depart from iniquity.
तो भी खुदा की मजबूत बुनियाद कायम रहती है और उस पर यह मोहर है कि खुदावंद अपनों को पहचानता है और जो कोई खुदावंद का नाम लेता है नाराजगी से बाज रहे.
For in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honorable use, some from dishonorable.
बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं बल्कि लकड़ी और मट्टी के लिए बाज इज्जत और बाज जिल्लत के लिए.
Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. Alleluia. Amen.
बस जो कोई उनसे अलग होकर अपने तय पाक करेगा, वो इज्जत का बर्तन और मकदस बनेगा. और मालिक के काम के लायक हर एक नए काम के लिए तैयार होगा. आमीन.
आमीन. So flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart.
जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ करते हैं उनके साथ रासबाजी और बे और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो.
And here we read the verses asking us not to enter in discussions with unbelievers.
और अभी जो हम आयत पढ़ेंगे वो ये है कि आपने जो ना ईमानदार है उनके साथ बहस नहीं करनी.
Or with brothers and sisters who say they believe but they do not believe.
और वो भाई और बहनें जो कहते हैं कि हम ईमानदार हैं लेकिन वो ईमान नहीं रखते.
It is impossible that they say they believe and then they want to depart from me. They want to go far from me. They are possessed by demons.
और ये नामुमकिन है वो कहते हैं हम ईमानदार हैं लेकिन वो मुझसे दूर जाना चाहते हैं. ये मुमकिन नहीं हो सकता.
Because demons are always afraid from the of the word.
क्योंकि जो शैतान है वो हमेशा खुदा के कलाम से नफरत करता है, डरता है.
23 has nothing to do with foolish, ignorant controversies. You know that they breed quarrels.
लेकिन बेवकूफी और नादानी की हजूतों से किनारा कर, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े पैदा होते हैं.
24 And the Lord's servant must not be quarrelsome, but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil.
और मुनासिब नहीं कि खुदावंद का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सबके साथ नरमी करे और तालीम देने के लायक और बुर्दबार हो.
I repeat, the Lord's servant must not be quarrelsome.
और मैं फिर दो राजू के खुदावंद का बंदा झगड़ा ना करे.
And 25 is written again correcting, like Nehemiah. We must correct.
और 25वीं आयत के अंदर जैसे नहमिया के अंदर हमने देखा कि दुरुस्त भी करनी है, यहां पर भी वही है.
25 correcting his opponents with gentleness, God may perhaps grant them repentance, leading to a knowledge of the truth.
25वीं आयत और मुखालफों को हलीमी से तादीब करे, शायद खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे ताकि वो हक की पहचान.
And they may come to their senses and escape from the snare of the devil after being captured by him to do his will.
और खुदावन के बंदा के हाथ से खुदा की मर्जी के असीर होकर अबलीस के फंदे से छूटे.
And brother, we can read also 2 Timothy, the following 3, and we finish 1, 2, 5. 2
और
Timothy
3, 1 to 5. अगले बाब की 1 से लेकर 5वीं आयत तक हम भी पढ़ेंगे, इसके साथ हम इसको खत्म करेंगे, 3 बाब.
Because you know that, the Bible, before there was no verses, it is a continuation. The verses have been invented afterwards for the facility of the translation.
और क्योंकि आप जानते हैं कि बाइबल के अंदर पहले जो है वो आयत के नंबर्स नहीं थे, लेकिन फिर बाद में ये बने हैं.
But I understand this, that in the last days there will come times of difficulty, for people will be lovers of selves, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. Avoid such people, for among them are those who creep into the houses, etc., etc. Read unto 5, brother.
लिखा है दूसरा तिमोथियस 3 बाब उसके 1 से 5 तक verse 1. लिखे ये जान रख के अखीर जमाने में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्द, गर्दोश, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुकर, नापाक, 3 तबई मोहब्बत से खाली, संगदिल, तोहमत लगाने वाले, बेजब, तंद मिजाज, नेकी के दुश्मन और दगाबाज, बीट, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशोशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे. 5 वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे, ऐसों से भी किनारा कर.
हालेलुया, हालेलुया. गॉड ब्लेस यू ऑल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट.
खुदावन आप सबको बरकत दे यीशु मसीह के नाम से.
एंड यू सी, when you are in simplicity, you understand clearly what's happening in the Old Testament and what's happening in the New Testament.
पर आप देखें जब आप सादगी के अंदर होते हैं तो आप बड़े ही आसानी के साथ और सादगी के साथ समझ सकते हैं कि पुराने नामों में क्या था और नया नामों के अंदर क्या है.
When you read a building of walls of Jerusalem or the building of the temple, you understand clearly what it means in the New Testament.
जब आप पढ़ते हैं पुराने नामा के अंदर कि किस तरह से जो हैकल है उसकी तामीर हुई, उसकी दीवारों की कैसे तामीर हुई, جب اس کی عمارت کی کیسے تعمیر ہوئی تو آپ اس کو نئے عہد نامے کے ساتھ بڑی ہی سادگی کے ساتھ روحانی طور پر سمجھ سکتے ہیں.
Because we are living stones, we are living rocks.
کیونکہ ہم جو ہیں وہ زندہ پتھر ہیں, ہم زندہ چٹانے ہیں.
So each time we listen to the word of God and we let it in our heart, we are building our inward temple. We are building a temple for God's spirit.
کیونکہ جب بھی ہم جو ہے وہ جسمانی عمارت کی بات کرتے ہیں تو ہم روحانی طور پر اپنے اندر اس عمارت کو جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں خدا کے خیم اجتماع کو.
And you see, after when the house is completed, we can say that we are at the perfect stature of Jesus Christ and we'll be ready for the rapture. This is the goal, objective of the message.
اور جو اس پیغام کا مقصد ہے یا جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اس کا حصہ بن سکتے ہیں, اس وقت کا حصہ بن سکتے ہیں, کس طرح سے ہم اس کے ساتھ جا سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے آپ کو دوبارہ سے ان ساری چیزوں کے اندر بحال کر سکتے ہیں.
Hallelujah. And God bless you, Brother Samuel, for the translation.
اور خداوند آپ کو برکت دے بھائی سیمیل اس ترجمے کے لیے. Thank you, Brother. God bless you too.
You have a good memory. I cannot translate like you.
Grace of God, Brother. Thank you.
Amen. So it's very important to understand things with the heart.
اور یہ بہت ہی ضروری ہے ان ساری چیزوں کو سمجھنا, اور یہ چیزیں ہمیں ہر وقت ہمارے دل سے یاد ہونی چاہیے.
And I tell you myself, from time to time I take the sermon, they are all in the site, I'm listening again what I preach. I am very, very blessed.
اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ تمام پیغامات جو ہیں یہ میں ان کو وقت کے ساتھ ساتھ دوبارہ سے سنتا رہتا ہوں, اور جب میں ان کو سنتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ برکت ملتی ہے.
Why? Because it does not come from me. It comes from the message of the hour that Brother Frank has distributed and Brother Branham has brought. That's all. God has decided this.
اور کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ میری طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ آخری وقت کا پیغام ہے جو خداوند کی طرف سے بھائی برانم اور بھائی فرانک کی وساطت سے ہم تک پہنچا ہے.
And each time after I preach, I re-listen again.
جب بھی میں اس پیغام کو سناتا ہوں تو میں اس کو دوبارہ سے ضرور سنتا ہوں.
So I am very happy that the Lord has given this teaching about Esdras and Nehemiah.
اور میں بہت خوش ہوں کہ خداوند نے یہ تعلیم جو ہے عزرا اور نحمیہ کی ہم نے سیکھی ہے.
And don't forget, avoid discussion.
اور اس بات کو مت بھولیں جو بحث ہے ان ساری باتوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے, ان سے دور رہنا ہے.
And pray for the spirit, the gift of discernment of the spirit. You discern things with the spirit.
اور ہمیشہ دعا کیا کریں کہ خداوند آپ کو روح پہچاننے کی نعمت عطا کرے تاکہ آپ روحوں کو پہچان سکیں.
You remember when someone came, he speak, and then I would like to read this, and then the Israel said, you are inventing this, you invent. You remember?
اور آپ کو یاد ہے کہ جب ہم اس کو پڑھ رہے تھے تو ایک شخص آیا, نہیں نہیں ایسے نہیں, اس کو ایسے کر دیں, اس کو ایسے کر دیں. لیکن عزرا نے کہا کہ عزرا کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ تم ان چیزوں کو یاد کر رہے ہو.
You remember this verse, brother? In the Nehemiah 6.
Nehemiah 6 باب کے اندر
8.
Nehemiah 6 باب اس کی 8 آیت کے اندر.
You can read it.
لکھا ہے, تب میں نے اس کے پاس کہلا بھیجا جو تو کہتا ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی بلکہ تو یہ باتیں اپنے ہی دل سے بناتا ہے.
آمین. You understand, brothers?
آپ سمجھے ہیں اس بات کو بھائیو.
Someone come, blah 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 blah.
کوئی شخص آتا ہے وہ آ کے خود سے ہی باتیں کرتا ہے.
You reply to them, no such things as you say have been done, for you are inventing them out of your own mind.
آپ اس سے کہیں जैसे उसने कहा कि तब मैंने उसके पास कहला भेजा जो तू कहता है इसी तरह की कोई बात नहीं हुई है बल्कि ये तू अपने दिल से ये बातें बनाता
है। So you see, pray God to have of the nine gift, the gift of discernment.
तो आप देखें आप हमेशा खुदावन से दुआ करें तो खुदा जो है आपको पहचानने की रूह अता करें।
So that you see if something comes from God or something from the enemy.
तो आप देख सकेंगे फिर कि क्या चीज खुदावन की तरफ से है और क्या चीज दुश्मन की तरफ से है।
Listen well, everybody.
गौर से सुने सब।
Listen well.
गौर से सुनिएगा।
Someone comes in your church or in your family.
कोई आता है आपके चर्च के अंदर या आपके खानदान के अंदर।
To help you or to build a church or to preach or to do something, whatever, or to sing, whatever.
कोई भी काम करने के लिए आपकी मदद करने के लिए गीत गाने के लिए या कुछ भी करने के लिए।
How do you know that
आपको कैसे पता
चलेगा this person will not destroy?
That?
How do you know that this person will not destroy you or destroy your family or destroy your church or destroy your choir or destroy whatever? How do you know?
आपको कैसे पता चलेगा कि ये शख्स जो है ये आपके खानदान को या आपके चर्च को या आपके किसी भी काम को खराब करने के लिए या तबाह करने के लिए आया है?
You see the fruits.
आप उसके फलों से फलों को देखेंगे।
And you see the obedience to the word.
और आप देखेंगे कि वो खुदा के कलाम का कितना ताबेदार है।
And above all, Brother Tariq, Danish, Samuel.
ऊपर भाई तारिक भाई दानिश और आप जो भी जितने भी हैं।
When you are together,
जब आप इकट्ठे होंगे।
And when you ask this person to do something, or when you ask this person to do something, this person must obey.
जब आप उस शख्स से कुछ कहें तो लाजिम है कि वो शख्स आपका एहतराम करे।
And without discussing or without murmuring or without being angry.
और बगैर डिस्कशन के बगैर बातें किए वो आपकी ताबेदारी करे या आपकी बात को माने।
And it is a sign that this person has a good heart and a good spirit.
और ये एक निशान है अगर वो आपकी बात को मानेगा तो फिर ये एक निशान है कि उसका अच्छा दिल है और वो एक अच्छा शख्स है।
When the person does not want to be submitted to the elders of a true local church, this person has not a good spirit.
और अगर जो अपने कामी किसिया का ताबेदार नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि वो एक अच्छा रूहानी इंसान नहीं है।
Even if he comes with $1 million.
बेशक उसके पास $1 million क्यों ना हो।
We must do things. The restoration is like a building. We must do things according to the Bible.
और बहाली क्या है? ये एक इमारत की तरह है जिसको हमने तामीर करना है।
You remember, Brother Frank, take the example of a house which has been destroyed, for example, following an earthquake.
और आपको पता है कि Brother Frank ने एक मिसाल ली थी। जो एक घर की मिसाल थी जो एक जलजले के अंदर घर जो है वो टूट कर गिर जाता है।
So you take the picture of the house before the earthquake and the restoration, it means that you do the same like in the picture, like on the picture.
और आप क्या करें, आप उस घर की तस्वीर लें गिरने से पहले की तस्वीर लें और जैसा वो पहले था वैसे ही उसको दोबारा से तामीर कर दें।
So you see that the restoration, you take the example of a building, it's correct. And you take the example of a building of the walls of Jerusalem, of a house, of the temple, it is correct. This is an example of the carnal. And then you see the spiritual.
और आप देखें कि यही बहाली है। बहाली क्या है कि आपने जैसी जो चीज थी उसको वैसा ही दोबारा से बना दिया है और बिल्कुल दुरुस्त तरीके से बना दिया है।
The only difference is that in the carnal, someone gives you $1 million. You say, thank you very much. But in the spiritual, you don't speak of money or bricks. You don't speak of this.
और रूहानी जब जिस्मानी तौर पर आप देखें कि इमारत के लिए इन सारी चीजों के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, लेकिन रूहानी तौर पर इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती।
We don't speak about microphones. It's not, you don't speak about loudspeakers. We don't speak about cars. This is carnal things.
और हम जिस्मानी चीजों की बात नहीं करें, ना ही माइक्रोफोन की बात करें, ना ही गाड़ियों की बात करें, ना ही और इस तरह की चीजों की बात कर रहे हैं। ये सब जिस्मानी है।
We don't speak about chai, dood, or whatever, or biryani. We don't speak about this.
हम चाय की, दूध की, या खाने पीने वाली चीजों की बात नहीं कर रहे।
The building constructions is with amen to the word, another amen to the word, another amen to the word, another amen to the word, and this is edification.
और बिल्डिंग की जो तामीर होती है रूहानी तौर पर, वो किस तरह से होती है? वो खुदा के कलाम के ऊपर आमीन कहने से, एक आमीन कहने से, फिर दूसरी बात जब सुनी उसके ऊपर आमीन कहने से, और इसी तरह आमीन कहते जाने से।
Like a brick upon another, a brick upon another, you say amen to the word, amen to the word, amen to the word.
और जैसे एक ईंट रखी जाती है, दूसरी ईंट रखी जाती है, तीसरी ईंट रखी जाती है, ऐसे ही कलाम की हर बात के ऊपर आमीन कहने से।
Hallelujah. God bless you all. I pray that a brother or a sister can pray and then we close.
और खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं कहूंगा आप में से जो भाई या बहन जो है वो दुआ करें और फिर हम इसको खत्म करें।
Hallelujah. Hallelujah. Anyone?
कोई भी भाई या बहन दुआ करे।
Hallelujah.
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 मसीह यीशु में मेरे जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरे सुंदर कदमों में झुकता हूँ। आज की इस तमाम मीटिंग के लिए तेरे जोर शुक्रगुजारी पेश करता हूँ। शुरू से लेके आखिर तक तूने हमारी महाफसत की, अपनी सिकूतों को दूर रखा। दूसरे भी मैं आज के इस कलाम के लिए, तेरे मीठे कलाम के लिए, तेरे इन बोलों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ जो तेरे बंदा ने हम तक फैलाया। दूसरे भी फजल बख्श के हम इसको सिर्फ सुनने वाले ना बने, बल्कि इस पे अमल करने वाले बने, और तेरा कलाम आज के दिन में हमारी जिंदगी को तब्दीली कर, हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाने का बायस बने। कुदूस रब्बी, तेरे बंदा के लिए दुआ करता हूँ कुदूस रब्बी, जैसे वो जोश वलवले के साथ तेरी खिदमत करता है, आगे भी इसी तरह खिदमत करता रहे। और फजल बख्श कुदूस रब्बी, जिन्होंने आज तेरा कलाम सुना है, वो भी इसी तरह बेखौफ और खतर होके तेरे कलाम को फैलाने वाले बन सके, ताकि बहुतों की जिंदगियां जो है बच सकें। कुदूस रब्बी, आज के तमाम भाइयों के लिए जिन्होंने मीटिंग अटेंड की, उनके घरानों के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ। कुदूस रब्बी, सबके साथ होना, जो भी मुश्किलात है, परेशानियां है, यीशु के नाम से जाती रहे। कुदूस रब्बी, एक बार फिर से तेरे जोर शुक्राना पेश करता हूँ। कुदूस रब्बी, फजल बख्श के हम तेरे साथ चलने वाले बन सके, तो हमें चुन ले, मिन्नत इल्तिजा को सुनकर कबूल कर, तेरा जलाली नाम लेके मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
हालेलुया। Hallelujah. God bless you all in the name of Jesus Christ. Thank you very
much. आप सबको बरकत दे यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
आमीन। So brothers, come as usually, we can open the
camera. God bless you.